الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ما شاء الله رمضان المبارك اس آخری عشرے میں ختم قرآن کی بھی بہت ساری تقریبات چل رہی ہوتی ہیں اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ معہد الفقیر الاسلامی کے اندر بھی روزانہ اعتکاف کا ایک پروگرام وہاں سے نشر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور الحمدللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو یہاں پر بیٹھ کے آن لائن سن بھی رہے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں الحمدللہ آپ کو کثرت کے ساتھ سننے کو مل رہی ہیں. امید ہے کہ اس سے سب کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا اور دعاؤں کے اندر بھی شمولیت کی توفیق مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے اور ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ بڑے لوگ ہیں, ان کی مثال گویا کہ ہنس کے جیسی ہے. اردو زبان کے اندر ایک محاورہ ہوتا ہے کہ کوا ہنس کی چال چلا. فلیمنگو کہتے ہیں اس کو انگریزی میں نا, ہنس تو بڑا خوبصورت جانور ہوتا ہے, بہت ہی اس کی عجیب سی ایک انوکھی چال ہوتی ہے. ایک ٹانگ کے اوپر اکثر کھڑا ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ چلتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے, اڑتا ہے تو اور خوبصورت لگتا ہے. لیکن کوا جو ہے وہ بس ایسے ہی, اچھی طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ کیسا جانور ہوتا ہے. انڈیا پاکستان کے اندر تو کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اردو کا محاورہ ہے کہ کوا ہنس کی چال چلا تو اپنی چال بھی بھول گیا. تو کوا کوا ہے, ہنس ہنس ہوتے ہیں. تو کوے کی خیر اسی میں ہے کہ وہ اپنی چال کو پہچانے کہ اس کی کیا چال ہے اور اسی کو اچھے سے چلنے کی کوشش کرے جیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے یا اللہ کا دیا ہوا جو نعمتیں اللہ کی دی بھی ہوتی ہیں. تو ہر ایک کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرے. اتباع بے شک نیکوں کی کرنی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ فتبع سبیل من اناب الیہ, کہ اتباع کرو, ان کی نقل کرو ان لوگوں کی جو کہ میرے راستے پہ چلنے والے ہیں. گھر کے اندر ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس ہو رہی تھی یا سیرت الصحابہ کی کلاس ہو رہی تھی, تو اس میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت اتحادی تھی اس کے اوپر بچوں کو بتا رہے تھے کہ کیسی نسبت عطا فرمائی تھی اللہ تعالی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ بالکل گویا کہ ایک ہو گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو جب ہم نے یہ باتیں کریں اور حضرت نے تو اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل بھی لکھی ہے کہ کیا کیا مماثلتیں تھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاصل تھیں, تو اس پہ کسی بچے نے ہی کوئی سوال کیا تھا اس قسم کا کہ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا چہرہ مبارک جو تھا وہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک جیسا ہو گیا تھا, یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر جتنی اولادیں تھیں وہ بالکل اتنی اولادیں تھیں جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی, اس قسم کا کوئی سوال کیا بچے نے. تو ہم نے اس کو سمجھایا کہ نہیں, نسبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا, نسبت اتحادی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی شکل جو ہے وہ بالکل کسی دوسرے کے جیسی ہو جائے جس کے ساتھ آپ کو نسبت اتحادی نصیب ہے, یا آپ کی جو ہے وہ بیویوں کی تعداد اتنی ہو جائے جتنی ان کی بیویوں کی تعداد ہے, یا آپ کی اولاد کی تعداد اتنی ہو جائے جتنی ان کی اولاد کی تعداد ہے, یا بلکہ یہ چند اختیاری معاملات کے اندر جب انسان اپنے آپ کو सबमिट करता है, और जितना कामिल सबमिशन होती है उतनी जो है उसको अपने बड़ों के साथ निस्बत यानी ताल्लुक नसीब हो जाता है। लेकिन जिन चीज़ों के अंदर उसका इख्तियार नहीं होता तो वो नहीं तब्दील होती। तो ऐसा नहीं था कि वो बगैर सिद्दीक खतान की शक्ल तब्दील होकर के नबी अलैहिस्सलाम सलाम जैसी शक्ल हो गई थी, क्योंकि उनको निस्बत इत्तेहादी हासिल थी, या सारे के सारे ज़िंदगी के मामला जो है वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम के जैसे हो गए थे। हालांकि अगर देखा जाए तो इत्तेबाए नबी अलैहिस्सलाम सलाम के अंदर अबू बकर सिद्दीक खतान से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। किसी ने इतनी इत्तेबा नहीं करी उम्मत के अंदर जितनी अबू बकर सिद्दीक खतान ने इत्तेबा करी। लेकिन हर चीज़ तो वो अपनी वैसे नहीं बना सके ना, तो वही मामला है कि भाई हर बंदे को जो है वो अपने अहवाल के हिसाब से काम करना होता है, और कुछ उसूल अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिए होते हैं, उन उसूलों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। हुदूद मुतय्यन की होती हैं, उन हुदूद से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने हमें पाबंद किया है, शरीयत और सुन्नत का पाबंद किया है, उसूलों का पाबंद किया है। तो बहरहाल, तो इस वजह से हम तो बहुत ही छोटे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्लाह ताला ने हमें काम पे लगाया है तो उसी की हम तकरार कर लेते हैं। एक छोटा सा एक मौका मिला है बात करने का, कुछ नए लोग भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, तो उन तक बात पहुंचाना अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका है उसका, तो उस मौके का इस्तेमाल करते हुए दुआ से पहले चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करनी थी कि जो दर्स कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से आजकल रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना ऑनलाइन चल रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप में से अक्सर साथी जो हैं और अक्सर ख़वातीन जो ख़वातीन की तरफ मौजूद हैं वो उसमें ऑनलाइन शामिल होती ही हैं, तो उनकी भी तकरार हो जाएगी, कुछ नए लोग जो हैं उनको शायद सुनने का भी कुछ मौका मिल जाए। तो चंद दिन पहले ही मुझे याद पड़ता है, अभी हफ्ते के दिन ही जो हम एक और साथी के घर में इकट्ठे हुए थे तो उनमें ये वाली आयात पढ़ी गई थी और उनकी तफसीर हमने मारूफुल कुरान से पढ़ के फिर आपके सामने प्रेजेंट करी थी, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इन तख्लीकात के बारे में फरमाया कि फालिकुल इस्बा, अल्लाह ताला रात की तारीकी में से सुबह को फाड़ करके निकालने वाला है। गोया कि रात की एक चादर तन जाती है तो अब सुबह जो आती है तो गोया कि उस चादर को अल्लाह ताला फाड़ते हैं, और यही लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया बीज को भी फाड़ने से, दाने को भी फाड़ देने से, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा, घुटली को भी फाड़ता है, दाने को भी फाड़ता है, उसके अंदर से जो है वो उगने वाली चीज़ें निकालता है। वही लफ्ज़ रात की तारीकी या रात की चादर को फाड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया, और आगे फरमाया व जअलल लैला सकनन, और रात को बनाया सुकून की का वक्त, सुकून की चीज़, व शम्स वल क़मर हुस्बानन, और सूरज और चांद को हिसाब किताब वाली चीज़ बनाया, कि इसको फॉलो करके इंसान जो है वो अपने हिसाब किताब को रखता है। चांद का हिसाब किताब जो है वो ज़्यादा तहकीक मांगता है, सूरज का हिसाब किताब ज़्यादा तहकीक मांगता है कि भाई सूरज के साइकिल्स कैसे होते हैं, उससे जो है वो दिन कैसे, कैलेंडर कैसे कैलकुलेट होता है वगैरह, तो वो आम बंदे के बस में इतना नहीं होता, उसके लिए जो है वो ज़्यादा जो मुहक्किक लोग होते हैं जिनको आजकल साइंसदान कहा जाता है तो वो सूरज को स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने फिर ये परपेचुअल कैलेंडर्स वगैरह भी बना लिए। लेकिन चांद का मामला अल्लाह ताला ने हिसाब किताब के लिए चांद को भी रखा, लेकिन इसको आसान कर दिया। ये ऐसा आसान हिसाब किताब का निज़ाम है कि जिसको कि एक बच्चा भी फॉलो कर सकता है। चांद को देख करके पता चल जाता है ये पहली का चांद है, दूसरी का चांद है, तीसरी का है, ये 13वीं 14वीं 15वीं का चांद है, और अब जो है वो चांद निकलने वाला है अगले महीने के लिए। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने आसान कर दिया दीन को, कि दीन के जो इबादात हैं उनका हिसाब लगाना, और दीन के जो अंदर महीने हैं, मुहर्रम का महीना, रमज़ानुल मुबारक का महीना, शाबान का महीना, तो इनका हिसाब किताब जो है वो आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो इसके तहत फिर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर एक नुक्ता लिखा था कि ये जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है ना, ये निज़ाम हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है कि सूरज जब निकलता है तो दिन होता है, और जब वो डूब जाता है किसी एक सर्टन एरिया के अंदर तो वो रात हो जाती है, और उसमें इंसानों की तबीयत अल्लाह ताला ने ऐसे बना दी कि जब अंधेरा हो जाता है तो फिर इंसान भी नींद की तरफ चले जाते हैं, और हैवानात भी वहाँ रहने वाले वो नींद की तरफ चले जाते हैं, सो जाते हैं, और सोने से जो है वो उनको सुकून मिल जाता है, और फिर उसके बाद ताज़ा दम होकर के फिर जब दिन चढ़ता है तो वो जागते हैं और अपने कामकाज करते हैं। तो हज़रत ने लिखा कि ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम हम पर फोर्स कर दिया है, ये हमारी मर्जी पर नहीं छोड़ा कि जिसकी मर्जी आए जब सो जाए, जिसकी मर्जी आए जब जागाए जाग जाए, जिसकी मर्जी आए जब काम करे, जिसकी मर्जी आए जब काम ना करे। अगर हमारी मर्जी पर छोड़ देते तो एक फसाद पैदा हो जाता, एक एब्रप्शन हो जाती हमारी सोसाइटी के अंदर, और पूरा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता। और इसको इस्टैब्लिश करने के लिए फिर हुकूमतों को बाकायदा कुछ करना पड़ता कि वो आपस में मिलजुल करके कोई एग्रीमेंट्स भी बनाएं, फिर उनको जो है वो इन्फोर्स भी करें कि भाई निज़ाम चलना है तो इस वजह से एक टाइम पे सो और एक टाइम पे जागो। थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं, पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जगह मजीद बन जाए। यहाँ पे आप लोग ऊपर बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है, आप आराम से ऊपर बैठें, ऊपर की जगह इस्तेमाल हो जाएगी, और बाकी लोग आगे आ जाएं। तो ये जो निज़ाम होता है ना, ये बज़ाहिर एक मुश्किल चीज़ लगती है, क्योंकि इसके अंदर इंसानों को पाबंद कर दिया जाता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का। वो पाबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन उसका ना होना जो है वो हमारे लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। तो निज़ाम ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, और इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि निज़ाम के बगैर वो चल नहीं पाता। उसकी तबीयत जो है ना वो ऐसी है कि उसको कोई ना कोई डायरेक्शन देने वाला, कोई ना कोई कोई गाइड करने वाला, कोई ना कोई जो है वो डूज एंड डोंट्स बताने वाला, और फिर इन डूज एंड डोंट्स को जो है वो इन्फोर्स करने वाले भी चाहिए। दुनिया के अंदर ये निज़ाम हम आज तो देख ही रहे हैं, मुल्कों का अपना अपना एक निज़ाम है। पहले जब मुल्कों का निज़ाम नहीं होता था तो बड़ी बड़ी और रियासतें होती थी, उनमें भी निज़ाम होता था, बादशाहत का निज़ाम हो या किसी और शक्ल का कोई निज़ाम हो। तो ये जो निज़ाम है ये अल्लाह ताला की नेमत है। अब इस निज़ाम से फायदा उठाना, ये जो नेमत है इससे इंसान फायदा कब उठाता है और इस निज़ाम से इंसान फायदा कब नहीं उठाता है कि निज़ाम तो मौजूद है, फायदे की चीज़ है, लेकिन जो इसके तहत रह रहे हैं वो फिर भी इससे फायदा नहीं हासिल कर रहे। भाई क्यों, जब निज़ाम मौजूद है तो आप क्यों फायदा नहीं हासिल कर पा रहे, क्या वजह है कि आप फायदा नहीं हासिल कर पा रहे? तो उसकी भी वजह बनती है। उसकी वजह क्या होती है कि ये निज़ाम चूंकि अल्लाह ताला की नेमत है तो नेमत के साथ ऑटोमेटिकली एक चीज टाइड अप होती है कि नेमत से फायदा उठाने के लिए उस नेमत की कदरदानी करनी पड़ती है, उसकी कदर करनी पड़ती है, उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, उसको अपने लिए फायदेमंद समझना पड़ता है, और उस निज़ाम को जो है फिर अपने फायदे के लिए यूज़ करना होता है, समझना होता है, और फिर उसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर कोई उस निज़ाम के अंदर है तो सही, लेकिन उसको एक मुसीबत ही समझे चला जा रहा है और उससे फायदा उठाने की बजाय उसको एब्यूज़ कर रहा है या उसके खिलाफ चलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इससे क्या होगा कि भाई एक फायदे वाली चीज मौजूद तो है लेकिन चूंकि उसने उसकी कदरदानी नहीं करी ना, तो इससे फिर उसको नुकसान होगा। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट की तरह की चीज है। जैसे कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई सही उल फितरत, सलीम उल फितरत इंसान और मेंटली केपेबल एंड सही समझने वाला, जिसका के मेंटल सेंसेस जो है वो सही काम करते हो, वो इसे इनकार करने की जरूरत महसूस करेगा। ठीक है, दफ्तर जाते हैं चाहे, ठीक है पाकिस्तान का निज़ाम बहुत खराब है, भाई पाकिस्तान का निज़ाम खराब है, दफ्तर का निज़ाम भी खराब है आपका, तो दफ्तर जाते हैं वहां पे एक निज़ाम के तहत ना, एक सुबह को एक टाइम पे आना पड़ता है और शाम को एक टाइम पे आपको जाना पड़ता है, और वहां पे जो रहते हैं तो वहां पे बैठ करके आप लाउड म्यूजिक तो नहीं स्टार्ट कर सकते ना कि दफ्तर के अंदर कि जी मेरी मेरा दिल चाह रहा है मैं लाउड म्यूजिक सुनूंगा, तो अब दफ्तर में बैठ करके आपने ऑन कर दिया। वहां पे आपको कुछ उसूलों का पाबंद रहना पड़ता है और बाकी सब भी पाबंद रहते हैं, फिर इस तरीके से एक सिनर्जी पैदा होती है, ऐसे काम होता है और फिर काम जो है वो रिजल्ट अचीव होते हैं ऐसे। तो निज़ाम से फायदा उठाने के लिए इस निज़ाम की कदरदानी करनी पड़ती है, और अगर इस निज़ाम की कदरदानी ना करें तो फिर क्या होता है कि इससे इंतशार पैदा होता है और इंतशार से जो है वो फसाद होता है। जब मुंतशिर कोई जो है वो निज़ाम को फॉलो नहीं कर रहा, या कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इससे इंतशार पैदा होता है। और जब इंसानों के दरमियान इंतशार होता है, चाहे वो उनके विदन इंतशार हो कि जहनी तौर पर वो मुंतशिर हैं, चाहे जो जो लोग निज़ाम का हिस्सा हैं उनमें इंतशार हो कि कोई कुछ कर रहा है, तो फिर बैरूनी इंतशार भी पैदा हो जाता है और केओटिक सिचुएशन बन जाती है। इसी बात को हमारी इन दरस कुरान की क्लासेस के अंदर एक और लेवल के ऊपर भी जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बात हुई थी कि जो तौहीद है हमारे दीन की असास, बिल्कुल सेंटर, हत्ता के जो बच्चों की एक क्लास के अंदर हम उनको एक टारगेट डायग्राम के जरिए से समझा रहे हैं कि इस्लाम 360 की डायग्राम, पूरा का पूरा इस्लाम ये है क्या, तो उस टारगेट डायग्राम के अंदर भी जो बिल्कुल बुल्स आई है, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो छोटा सर्कल है ना, जो कि हर चीज का दरमियान है, वो सर्कल तौहीद, हमारे दीन की बिल्कुल बुनियाद और बिल्कुल सेंटर, जिसको कि उस टारगेट डायग्राम के अंदर, जैसे कि वो डार्ट्स वाले जो टारगेट का एक एक वो होता है ना गोल, तो उसमें भी एक बुल्स आई होती है बीच के अंदर। तो दीन की बुल्स आई क्या है, बिल्कुल सेंटर क्या है, वो तौहीद है, हर चीज की बुनियाद। और तौहीद का ऑपोजिट क्या है, तौहीद का ना होना क्या है, इसी को शिर्क कहते हैं, इसी को शिर्क कहते हैं। तो व्हाट इज तौहीद, तौहीद मींस कि एवरीथिंग एल्स दैट सराउंड्स इट, हर चीज जो उसके उसके गिर्द है, उस टारगेट डायग्राम के अंदर बहुत अच्छा जिसने भी बनाया, बहुत अच्छा काम किया है। पहला सर्कल जो है वो अकायद का सर्कल हो गया, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, और कदर पर ईमान, और आखिरत पर ईमान, और फरिश्तों पर ईमान। फिर उसके बाद सर्कल जो है वो फराइज इबादात का सर्कल हो गया, फिर अखलाकियात का सर्कल हो गया, फिर मुआशरत मामलात का सर्कल हो गया, फिर करते करते आखिर में जो है वो इस्लामी रियासत का सर्कल हो गया, बिल्कुल आउटर सर्कल जो है वो पॉलिटिकल इस्लाम, इस्लामी रियासत का सर्कल हो गया। तो ये जो कुछ भी है हमारे दीन के अंदर, इन सब का फोकस क्या होना चाहिए, क्या होना लाजमी है, वो उसी एक बुल्स आई की तरफ फोकस होना, उसी सेंटर की तरफ, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ। जो भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम अमल कर रहे हैं, इनफिरादी हो या इज्तिमाई हो, हत्ता के रियासत के लेवल पे भी कोई अमल कर रहे हैं, तो वो भी किसके लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। इसी को इखलास भी कहा जाता है, खालिस अल्लाह के लिए। और इसका ऑपोजिट क्या है कि अल्लाह के साथ साथ किसी और के लिए भी कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के साथ साथ किसी और को भी खुश करना चाहते हैं, या ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कर तो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला को जो है वो हेल्पर्स की जरूरत है, पार्टनर्स की जरूरत है, तो इस वजह से मुझे जो है ना वो दूसरों को भी खुश करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मेरा काम होगा, अल्लाह को खुश करने से सारा काम नहीं होगा। जैसे आज के मुसलमान का एक आम नजरिया होता है, दीनदार मुसलमान का, दुनियादार का तो ये भी नहीं होता, दीनदार का ये होता है कि हाँ अल्लाह को तो खुश करना है, नमाजें तो पढ़नी है, रोजे तो रखने हैं, ज़कात तो देनी है, लेकिन काम नहीं बनेगा जब तक किसी और को भी खुश ना किया जाए। अल्लाह ताला तो पूरा काम नहीं कर सकता ना, नऊज़ुबिल्लाह, पूरा काम अल्लाह नहीं कर सकता, तो यू बेटर कहते ना जरा अपने हाथ पैर जरा मजबूत रखने चाहिए, क्या पता कल को जो है वो झंडी दिखा दी उसने, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो हमें दूसरे हेल्पर्स की जरूरत पड़ जाएगी ना, जैसे दुनिया में काम काज होते हैं ना, हम जरा दो चार क्या कहते हैं उसको तैयार करके रखते हैं अपने फॉल बैक्स, ठीक है, कि अगर इधर से काम ना बना तो उधर चले जाएंगे, उधर से काम ना बना तो इधर चले जाएंगे, इधर से भी ना बना तो फिर किसी और सोर्स सिफारिश की तरफ चले जाएंगे। अहम काम के लिए हम ऐसे करते हैं। तो यही एटीट्यूड जो है वो अनफॉर्चुनेटली आज के मुसलमान का आमतौर पर, सबका नहीं, अल्लाह ताला के साथ भी बना हुआ है कि पूरा काम नहीं होने वाला अल्लाह के साथ। यानी सीधा काम करेंगे तो काम बनेगा नहीं, उल्टा काम भी साथ साथ करना ज़रूरी है। तो ये शिर्क है, और शिर्क जो है ये इंतशार है। यू आर नॉट फोकस्ड, यू डू नॉट हैव फोकस, ठीक है, यू आर डी फोकस्ड। और इस इंतशार के अंदर पे क्या होता है, इंसान की जिंदगी के अंदर फसाद आता है, और यही फसाद उसके अपने पर्सन से बढ़ता है तो फिर ये मुआशरे के भी फसाद का सबब बन जाता है। जैसे कि हम पूरे मुआशरे के अंदर इस वक्त देख रहे हैं, पूरा मुआशरा फसाद याफ्ता क्यों है, हजार उसके रीजन हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन वॉट इट बॉयल्स डाउन टू, बिल्कुल जो उसकी असल रीजन है ना, हर चीज ऊपर से होते होते तो बिल्कुल एक बेस पे जाके पहुंचती है, वो क्या है, इंतशार। इंतशार इस फसाद की वजह बनती है, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर अगर हम फोकस हो जाएं तो अल्लाह जो है वो काफी है, अल्लाह ताला हमारे लिए भी काफी है, अल्लाह ताला हमारे काम बनाने के लिए भी काफी है। तो डीफोकस होना जो है ना, ये कोई छोटा मसला नहीं है। बात ये समझाने की असल में कोशिश की जा रही है कि डीफोकस होना, मुंतशिर होना, ये कोई छोटा मसला नहीं है, यही असल मसला है, यही असल मसला है। चाहे बैरूनी एतबार से देखा जाए, आफाकी एतबार से देखा जाए, चाहे अनफुसी एतबार से, इनफरादी एतबार से देखा जाए, यही असल मसला है। और निजाम को बर्बाद करने के लिए क्या चीज रोल प्ले करती है, फाइनल डिसिसिव रोल किसका होता है, डीफोकस होने का रोल होता है, जिसकी वजह से जो निजाम की नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी होती है, वो नेमत जो है ना, फिर वो हमारे फायदे के लिए नहीं हो रही होती हमारे, हालांकि मौजूद है, हम फायदा नहीं उठा पा रहे, नुकसान ही नुकसान चल रहा है, भाई क्यों आप फायदा नहीं उठा रहे, जबकि निजाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, क्योंकि हम फोकस नहीं है, हम डीफोकस्ड है, ठीक है। तो निजाम की अहमियत ये पहले बात हो गई, लेकिन इस निजाम से फायदा उठाने के लिए फोकस होना जो है वो हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। हमारा दुश्मन शैतान, जिसको अल्लाह ताला ने हमारी आजमाइश के लिए इस दुनिया के अंदर रखा, वो ये बात बखूबी जानता है, बखूबी जानता है। क्यों, हमारे मशायख फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, कि शैतान आलिम है, जाहिल नहीं है, इल्म रखता है वो, और आरिफ भी है, पहचान भी रखता है, रिकग्नाइज भी करता है चीजों को। खाली जो है वो थ्योरी नहीं पढ़ी हुई उसने, बल्कि एक्चुअली उसने मुशाहिदे भी किए हुए हैं, वो पहचान रखता है कौन कैसा है, किसकी क्या सिफत है, किसका क्या मिजाज है, किसकी क्या सलाहियत है, किसकी क्या जो है वो कमजोरी है, इसको कहते हैं पहचान रखना। तो वो आरिफ भी है, हत्ता कि यहां तक फरमा दिया कि वो जो रिचुअलिस्टिक इबादत कही जाती है ना, तो वो रिचुअलिस्टिकली आबिद भी है, रिचुअलिस्टिकली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इबादत की वो जो ब्रॉडर डेफिनेशन है उसके अंदर तो इश्क शामिल होता है। तो हम यहां पे इश्क की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो हम खाली रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, इबादत, नमाजें पढ़ रहा है तो सजदे कर रहा है, तो जब चुप्पे चुप्पे में सजदे कर रहा है, तो आलिम भी है, आरिफ भी है, आबिद भी था, लेकिन आशिक नहीं था, ठीक है। तो ये जो शैतान है ना, ये अपने इस इल्म की वजह से अच्छी तरीके से हमारी कमजोरी को जानता है कि देखो ये जो मखलूक अल्लाह ने बनाई है ना, जिसके जिसको सजदा करने का मुझे हुक्म हुआ था, और जिस हुक्म की नाफरमानी करके मुझे जो है वो जन्नत से और फरिश्तों के सोहबत से जो है वो बेदखल कर दिया गया, इसकी कमजोरी ये है कि ये डीफोकस्ड हालत में कामयाब नहीं हो सकता। इसको अगर मैंने फंसवाना है ना, इसको अगर मैंने मरवाना है, और जो उसने कस्में खाई हैं कि इसको तो मैंने बनी आदम को जहन्नुम में पहुंचवाना है, हमेशा हमेशा के जहन्नुम में, तो उसके लिए एक काम करना है, वो क्या है, डीफोकस करना है इसको। यानी इस्तेलाही टर्म में शिर्क में मुब्तला कर देना, शरीयत की इस्तेलाह में इसको शिर्क कहते हैं। और अगर शरीयत वाला शिर्क जो है वो इससे नहीं करवा पा रहा, मुसलमान है अभी भी रसूल को मानता है, और अभी भी जो है वो नमाजें पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इबादत कर रहा है, मैं नहीं रोक पा रहा इसको इबादतें करने से और ईमान से बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो कम अज कम इनकी इबादतों में इसको डिफोकस करो, इसके इल्म के अंदर इसको डिफोकस करो, ठीक है। तो इस बात से हमारा दुश्मन बखूबी वाकिफ है, इसलिए वो हमसे जो है ना वो नाकदरी करवाता है निज़ाम की, जो अल्लाह ताला ने हमारा ज़ाती निज़ाम बनाया उसमें भी जो है डिफोकस करवाता है, और जो इज्तमाही निज़ाम बनाया उसमें भी डिफोकस करवाता है, क्योंकि उसको पता है कि इनको नुकसान पहुंचाने का यही असल रास्ता है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हम उनकी कदरदानी करें, उनके ऊपर फोकस करें, तवज्जो से बात को सुना करें, उसकी गहराई में जाने की कोशिश किया करें, उससे खुद भी फायदा उठाने की कोशिश किया करें, और फिर अल्लाह के बंदों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से काम लेता है, क्या काम लेता है? निजाम बनवाने का काम लेता है। अल्लाह अपने नेक बंदों को यहां पे भेजता है ना दुनिया के अंदर, वो क्या काम करने के लिए आते हैं? वो निजाम बनाने का काम करते हैं। क्या मतलब? वो तो अल्लाह को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम करते हैं। आप ये क्या नई बात कर रहे हैं? आप तो वो खलीफों वाली बातें शुरू कर दी हैं आपने, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कायम करो, खिलाफत कायम करो, आपने तो वाली बातें शुरू कर दी हैं। नहीं, हमने वो वाली बातें नहीं शुरू करी, आप समझ नहीं पा रहे। निजाम बनाने का क्या मतलब है कि वो बंदों को नज़म में जोड़ने की मेहनत कर रहे होते हैं, नज़म में मुनज़म कर रहे होते हैं, और ये नज़म सिर्फ बैरूनी नज़म नहीं होता, सबसे पहले तो अंदरूनी नज़म सेट करना कि अंदरूनी इंतशार जो है इस इंतशार को तुम खत्म करो, इस इंतशार को खत्म करो, तुम फोकस हो जाओ अपनी रब की तरफ, फोकस हो जाओ रब के रसूल की तरफ, फोकस हो जाओ रब के रसूल का जो दीन है उस दीन की तरफ फोकस हो जाओ, ताकि तुम्हारा अंदरूनी इंतशार खत्म हो। ये नज़म में गोया कि एक, जिस तरह से आजकल बड़ी टर्म हो रही है, आज तो खैर हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, हमने एक्सेप्शन ली हुई है रात को देर तक जागने वाली, वरना आप लोगों को अंदाजा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा उसको जल्दी सोना, जल्दी सोना। तो वो जो सोने वोने से मुतालिक बातें हो रही है ना, तो फिर उसमें वो क्या हो रहा है, सर्केडियन रिदम, राइट? सर्केडियन रिदम जो होता है ना, सर्केडियन रिदम, वो इंसान के अंदर जो सिस्टम है वो बाकायदा एक रिदम है। रिदम रिदम क्या होती है? जिस तरह मौसीकी के होते हैं ना रिदम होते हैं, उसके अंदर राइम्स होते हैं, उसके अंदर जो अल्फाज होते हैं वो भी राइमिंग अल्फाज होते हैं, शेर व शायरी के अंदर भी राइमिंग अल्फाज होते हैं, उसी तरीके से जो टोन होती है वो एक रिदम होती है। तो इंसान की बॉडी के अंदर एक रिदम है, रिदम है ये। वो रिदम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर शोर शराबा इंतशार खेओस फसाद। तो उस रिदम में वापस लेकर के आना इंसान के अंदर को, इंसान की जात को, ये इंसान के साथ सबसे बड़ी खैर ख्वाही है। और जब ये रिदम उस रिदम से मैच कर जाता है जो कि अल्लाह ने बनाया है, तो ये इंसान जो है फिर अपने परवरदिगार से जुड़ने की सलाहियत रीगेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है। इसी वजह से कुछ लोग जो है ना वो कॉन्वर्ट्स को जो है वो रिवर्ट कहते हैं, कॉन्वर्ट्स को रिवर्ट कहते हैं। हम किसी वजह से, हमने अपने स्कॉलर से सीखा कि नहीं वो रिवर्ट नहीं होते, लेकिन वो अलग बहस है। लेकिन रिवर्ट का मतलब भी तो वही ना कि चीज तो बनाई थी अल्लाह ने, जो फितरत बनाई थी वो तो रिदम बनाया था, यू लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, माहौल की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, लेकिन फिर माहौल के असर की वजह से उसके माँ बाप उसको नसरानी बना देते हैं और यहूदी बना देते हैं या कोई और बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, रिदम लूज कर जाता है वो अपनी। अब जब वो वापस अल्लाह से जुड़ता है, ईमान लेकर के आता है, तो वो उस रिदम में वापस आ जाता है, तो ये नज़म क्रिएट हो जाती है। तो कैसे नज़म क्रिएट हुई? अल्लाह के बंदों की मेहनत से अल्लाह ताला ने फिर उसको हिदायत दी इसके वास्ते से, और फिर उनमें रिदम वापस आ गई। उसी तरीके से जब बंदे आपस में चंद और इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सब भी आपस में एक रिदम में जुड़ जाते हैं, एक नज़म में जुड़ जाते हैं। नज़म में जुड़ने वाले बंदों से फिर निज़ाम बन जाता है। और जैसे कि अभी कल या परसों की क्लास में बात हुई थी कि ये निजाम जो है वो छोटे से बड़ा होना शुरू होता है, बड़े से छोटा होना शुरू नहीं होता। तो माइक्रो निजाम बनते हैं, माइक्रो निजाम बढ़ते बढ़ते फिर वो जाके मैक्रो निजाम बनते हैं। हम जो अपने कुछ साथियों से जो इख्तलाफ करते हैं वो सिर्फ इस बात पे करते हैं कि वो मैक्रो निजाम की बात कर रहे हैं, हम माइक्रो निजाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना समझ में आ गया है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं हमारे कि मैक्रो निजाम बनना मुमकिन ही नहीं है। तो माइक्रो निजाम बनाना पड़ेगा, लेकिन निजाम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल से चंद लोग जो हैं बगैर निजाम के सरवाइव कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं सरवाइव कर सकते। तो अल्लाह के बंदों को निजाम की जरूरत है। तो इस निजाम की अहमियत को समझना और इससे खुद भी फायदा हासिल करना और अल्लाह के बंदों को भी फायदा पहुंचाने की फिक्र करना। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, कि दीन तो सरासर खैर ख्वाही है। कल एक दोस्त से बात हो रही थी, बल्कि कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो उनको हमने यही बात सामने रखी कि अद्दीनुन नसीहा एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट है अरबिक का कि जिसके अंदर मुब्तदा भी मारफा है और खबर भी मारफा है। मौसूफ सिफत या मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर बनेगा ना। तो जब मुब्तदा और खबर दोनों मारफा होती है ना, तो इसका मतलब यह होता है कि ना मुब्तदा खबर के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है और ना खबर मुब्तदा के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, दोनों एक दूसरे के लिए। तो इससे क्या पता चला कि दीन बगैर खैर ख्वाही के हो ही नहीं सकता और खैर ख्वाही बगैर दीन के हो ही नहीं सकती। वो खैर ख्वाही नहीं होगी या मुकम्मल खैर ख्वाही नहीं होगी जिसमें दीनी खैर ख्वाही शामिल ना हो, यानी अल्लाह की बंदगी सिखाना, अल्लाह की बंदगी की तरफ मायल करना और आखिरत की फिक्र करना अगर खैर ख्वाही में शामिल नहीं है तो वो खैर ख्वाही नहीं है, वो एक लोड़ी नंगनी किस्म की खैर ख्वाही है कि आप उसके खाने पीने ना पीने का इंतजाम कर रहे हैं, आप उसके जो है वो किसी और दुनियावी मुश्किल का इंतजाम कर रहे हैं, खैर ख्वाही तो कर रहे हैं लेकिन आप उसके दीन का इंतजाम नहीं कर रहे, दीन की फिक्र नहीं कर रहे, आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे, ये कैसी खैर ख्वाही भाई। सेहत की फिक्र कर रहे हैं लेकिन सेहत की फिक्र में नीयत क्या होनी चाहिए कि अच्छी सेहत होगी, अच्छे से जो है वो दीन पे अमल कर सकेगा, अच्छे से जो है अपनी आखिरत बना सकेगी। तो खैर ख्वाही दीन के बगैर मुकम्मल नहीं, उसी तरीके से दीन खैर ख्वाही के बगैर मुकम्मल नहीं। तो अब अगर हमने निजाम की अहमियत को समझा अपने लिए और हम उससे बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छा माहौल मिल गया, वो स्ट्रीट्स के ऊपर ड्रग्स में जो है वो अब नहीं है बल्कि उनको जो है वो चंद हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठना बैठना नसीब हो गया, वो ड्रग्स से बच गए, वो जो है वो दूसरे किस्म के बड़े बड़े जो है मसलों से बच गए, बुलियंग से बच गए और फलानी चीज से बच गए, ढिमकानी चीज से बच गए, एथिज्म से बच गए, एग्नोस्टिसिज्म से बच गए, दहरियत से बच गए, फलानी चीज से बच गए, बेशर्मी बेहयाई से बच गए। तो खैर मिल गई, खैर, खैर ख्वाही नहीं मिली, खैर मिली है। ख्वाही तो अभी इसके अंदर ऐड करनी है और खैर ख्वाही तो उस वक्त होगी जब दूसरों के लिए भी यही चीज हम चाहें। तो अद्दीनुन नसीहा, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, ये ऐसी नहीं है कि बस समथिंग एडिशनल मुस्तहब है जी, नफिल है जी, नहीं। अगर हम अपनी अकल को सही मानों में इस्तेमाल करें तो ये बात खुल के सामने आएगी कि ये नफली चीज नहीं है, ये फर्ज है, ये फर्ज है। कैसे फर्ज है? इसलिए कि इसके बगैर आपकी अपनी सर्वाइवल जो है वो एट रिस्क होती है, आप खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, आपका ईमान सर्वाइव नहीं कर सकता, आपके औलाद का ईमान सर्वाइव नहीं कर सकता, दीन जो है वो थ्राइव नहीं कर सकता। तो दीन दीन की सर्वाइवल की फिक्र किए बगैर दीन पे अमल कर रहे तो वो तो फिर सर्वाइव नहीं करेगा, चंद दिन की बात है, वन जनरेशन मैक्स, फिर ये सारे टोपियां शोपियां सब उतर जाएंगी, बुरके शुरके सब उतर जाएंगे। जो खैर हासिल करी है ना, बुरकों की खैर, पर्दे की खैर, के माशाल्लाह शौहर साहब जो है वो नज़रों की हिफाजत के कायल हो गए हैं, अब जो है ना वो जा करके सेक्रेटरी के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बनाते, और दूसरी तीसरी शादियां या बगैर शादियों के जो है वो दूसरों से ताल्लुकात नहीं बनाते, ये खैर मिल गई है औरतों को, उनके शौहर साहब जो है ना वो अब नज़र झुका करके काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। उसी तरीके से जो है वो मर्दों को भी बहुत सारी खैरें मिल गई हैं कि बेगम साहिबा जो है वो दीनदार हो गई हैं, बेगम साहिबा जो है परेशान नहीं करती ज़्यादा, शॉपिंग ज़्यादा नहीं करती, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो हालात ये हैं कि इधर भी एक्स्ट्रा मैरिटल, इधर भी एक्स्ट्रा मैरिटल की लाइन लगी हुई है। तो बेगम साहिबा भी तमीज़ की हो गई, अब वो मसले नहीं रह गए, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है हर घर के अंदर, वो तो बड़े घरों में भी चलती थी तो हमारे घरों में क्यों नहीं चलेगी, लेकिन बड़े बड़े मसले हल हो गए ना, तो खैर मिल गई, लेकिन ये खैर शॉर्ट लिव्ड खैर है, बहुत शॉर्ट लिव्ड खैर है अगर खैर ख्वाही इसमें शामिल ना हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ना दीन उन नसीहा, ये ऐसे ही नहीं फरमा दिया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात जो है वो हीरे मोती से जो है वो लिखने की नहीं बल्कि हीरे मोती से ज्यादा अहम समझने की बात है। तो चंद बातें जो जहन में आ रही थी एकदम से आखिर वक्त में, बस तो यही है कि भाई हमें इस सिस्टम की जो है वो कदरदानी करनी चाहिए। अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं कि जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, और शुक्र जो है ना ये कदरदानी के बगैर अदा नहीं हो सकता, उस जुबान से कुछ कलमात कह देते हैं ये हो गया अदा, और नेमत की नाकदरी कर रहे होते हैं, तो ये शुक्र जो है ये शुक्र नहीं है। अगर आप नेमत की नाकदरी कर रहे हैं यानी उसको उससे सही मानों में उसको समझने की उसकी अहमियत को कदरदानी की क्या तारीफ होती है उर्दू के अंदर, अहमियत को पहचानना समझना और उससे सही मानों में फायदा उठाने की कोशिश करना और इसके आगे बढ़ करके कि दूसरों को भी उससे फायदा पहुंचाने की कोशिश करना, यह पैकेज होगा तो फिर कदरदानी कहलाएगा। और अगर यह नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं, अच्छा बड़ा एहसान किया आपने शुक्र कर दिया, तो भाई शुक्र जो है ना ये कदरदानी के बगैर नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला का वादा क्या है कि तुम शुक्र करोगे तब जो है ना ये नेमत बढ़ेगी, और शुक्र नहीं करोगे तो ये नेमत जो है ना तुमसे छीन ली जाएगी। जैसे अभी बात हो रही थी शॉर्ट लिव्ड नेमतें, शॉर्ट लिव्ड बस चंद दिन की बात है, बस आप उसे मदद उठा लें जितने आपने उठानी थी, ज़्यादा देर नहीं रहेगी आपके घर के अंदर ये नेमत, ज़्यादा मज़े नहीं रहेंगे, ज़्यादा लंबे अरसे के नहीं होंगे। तो निज़ाम की हमने फिर मदद करनी है, अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया ना इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व यस्तबित अक़दामकुम, इसी को इस पूरे बयान की टर्मिनोलॉजी में अगर आप ट्रांसलेट करें इस शर्तिया जुमले को, तो उसका मतलब क्या बनेगा कि तुम अगर अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम की मदद करोगे तो अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे शामिल हाल हो जाएगी, और अल्लाह ताला फिर तुम्हारे कदमों को भी खैर के ऊपर जमा देंगे। क्या बात हुई थी अभी कि दिस इज नॉट नफली, ये मुस्तहब अमल नहीं है, ये वाजिब अमल है, इसके बगैर हमारे कदम जमेंगे नहीं दीन के ऊपर। शैतान जो है वो इंतशार में डालता है, जो नेमत मिली हुई होती है ना उसको छोड़ करके दूर, इसको कहते हैं उर्दू जुबान के अंदर घर की मुर्गी दाल बराबर और दूर के ढोल सुहाने, ये शैतान का काम है, घर की मुर्गी दाल बराबर यानी घर में जो नेमत मिली है वो दाल से भी ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं, और जो दूर के ढोल होते हैं ना वो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर सारे दूर के ढोल है, घर की मुर्गी तो फिर लोकल होती है ना, वो तो जुम्मे को भी मिल जाती है, वो फरेंगी बस में भी मिल जाती है, और वैसी भी जो है व्हाट्सएप पे भी मिल जाती है, और जो है वो मुलाकात के लिए टाइम भी मिल जाता है, वो घर की मुर्गी। लेकिन जो दूर बैठे हुए हैं ना वो बड़े सुहाने बड़े अच्छे, तो भाई वो अच्छे होंगे बेशक होंगे, लेकिन आपके लिए तो वो दूर के ढोल हो गए, हमारे लिए वो दूर के ढोल हो गए, हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है इससे, हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है इससे। तो इस तरीके से शैतान मुंतशर करता है। अब जो है वो अल्लाह ताला ने इल्म का इंतज़ाम किया, भाई कैसे तरबियत, خود بھی کرنی ہے، اپنی بھی کیسے تربیت کروانی ہے، اپنی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، لیکن چونکہ فوکس ہو کے بات ہی نہیں سن رہے، بات ہی نہیں سمجھ رہے، تو اب جو ہے وہ بڑا دینی نظام ہے، بڑے دین کے سرکل میں جڑے ہوئے ہیں، بڑا جو ہے مجلس میں بھی آتے ہیں، بڑا جو ہے وہ کلاسز بھی سو کالڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ حقیقت پتہ چلتی ہے نا، تو پھر تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم تو بیان کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کے، وہ تو خواتین بتاتی ہیں کہ جی فلاں لوگ تو بالکل آخر میں آتے ہیں. ہم نے کہا جی ان کو بچوں کو دیکھ کر کے ویسے تو مجھے ویسے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ آخر میں آتے ہوں گے، کیونکہ خود تربیت نہ سیکھی، بچے کو کیا سکھائیں گے. اب بچہ جو ہے وہ آؤٹ ہوا ہوا ہے، ایک دم ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، جہاں پہ ان کے بچے آ جائیں ادھر ہنگامہ، دھما چوکڑی مچا کر کے رکھی ہوئی ہے. کیوں بھائی آپ علم سنتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تربیت بچے کی تربیت کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ سیکھ کے نہیں دیتے، سن کر کے نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں ہوتی، لگے ہوئے ہیں چیٹنگ کے اوپر، لگے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ گپے مارنے کے اندر، لگے ہوئے ہیں جو ہے وہ کسی اور دور کے ڈھول کو سننے کے اوپر، تو بچے کی تربیت سیکھ ہی نہیں رہے. تو بچہ جو ہے وہ بالکل آؤٹ ہوا ہوا ہے. تھوڑے دن کے بعد جب وہ اور بڑا ہوگا تو پھر وہ آؤٹ ہونے کی دوسری ڈیفینیشن، دوسرا ٹرم بن جاتی ہے اس کے لیے، افلاطون. پھر وہ افلاطون بنتا ہے اور پھر وہ ہاتھ سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری جو مصیبتیں ہیں نا، یہ ہمارے انتشار کی وجہ سے ہیں، ہمارے انتشار کی وجہ سے ہیں. تو وی شوڈ بی فوکسڈ، اس کی اہمیت کو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے آپ کی قدردانی نہ کری، آپ ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیں. بھائی آپ نے ہماری قدردانی کا مسئلہ نہیں ہے، خیر جو بھی ہے مسئلہ، لیکن اللہ کی قدردانی تو کر لینا کم از کم، اللہ تو اللہ ہے نا، ٹھیک ہے. تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ دیں وہ بھی اللہ ہی نے دیں، جو بل واسطہ دیں کسی کو واسطہ بنا کر کے پہنچائیں وہ بھی اللہ نے ہی پہنچائیں. تو اللہ کے بندوں کی قدر، اللہ کے دیے ہوئے نظام کی قدر بھی دراصل اللہ کی ہی قدر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اس کے اوپر الحمدللہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں شک ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بہت شدید عذاب کے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہوئی اپنے قرآن مجید کے اندر اسی ناقدری کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر قرآن مجید اپنے کلام کی نسبت سے جڑنے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ وہ مبارک موقع ہے کہ جس کے اندر الحمدللہ آج کی رات میں بھی کئی لوگوں نے اپنا قرآن مجید تراویح میں ختم کیا، اور آج سے پیچھے بھی بہت سارے قرآن مجید جو ہیں وہ تراویح کے اندر ختم ہوئے ہیں. ہم نے اس سال یہ ارادہ کیا تھا کہ ایک ہی گیدرنگ کریں گے، پچھلے سال ہر ختم کے اوپر کوئی گیدرنگ ہو رہی تھی تو وہ ایک بہت مشکل ہو گئی تھی سب کے لیے ہی، تو ایک ہی گیدرنگ کریں گے. تو یہ وہ والی گیدرنگ ہے کہ جس کے اندر جتنے ختم قرآن ہوئے ہیں ان سب کی گویا کہ ایک مشترک جو ہے وہ دعا بھی ہو جائے گی. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سارے بچے کہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، جو حفظ کر رہے ہیں، اور وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو سپورٹ کیا، اپنے بچوں کو اس محنت کے اوپر لگایا. بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہمارے ایک دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے پورے محلے کے اندر، کراچی شہر کے اندر رہتے تھے، تو پورے محلے کے اندر جو حفظ کا مدرسہ تھا اس میں کوئی ایک بچہ بھی جو ہے نا وہ لوکل نہیں ہوتا تھا، سارے حفظ کرنے والے بچے باہر سے آئے ہوئے، یعنی پنجاب سے آئے ہوئے ہیں یا خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں. کراچی کا ایک بھی بچہ نہیں ہوتا تھا محلے کا ایک. کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے وہاں پہ ڈالا تو آئی واز دی اونلی ون، میں واحد بچہ تھا کہ جس کو کہ میری ماں نے اس شوق کے ساتھ حفظ کرنے کے لیے ڈالا. اور یہ بات تو تھی آج سے 25 سال پہلے کی، لیکن کوئی خاص تبدیلی آئی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں نا دین کی ہوائیں چل گئی ہیں اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. ابھی چند دن پہلے کسی اور نے ہمیں کراچی سے خط لکھا کہ ہمارے بچوں کے مدرسے میں بھی اسی قسم کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں کے اساتذہ آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو دو تین بچے ہیں نا، تعلق والی تھیں، تو وہ تو خیر پہلے سے ان کے بچے جو ہے وہ حفظ بھی کر چکے تھے اور عالم بھی بن رہے ہیں، कहते हैं कि बस ये तीन लड़के हैं कि जो के लोकल हैं, और कोई लोकल है ही नहीं, सारे बाहर के आए हुए मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत जी की दुआएं, हजरत जी की मेहनतें, हजरत जी की तवज्जोहात, हजरत जी की फिक्रें, तसव्वुर करें सब लोकल हैं, राइट। लोकल से मुराद सऊदी तो नहीं है, लेकिन सब रियाज में रहने वाले हैं, इसी एरिया के अंदर रहने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने कितनी कितनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक अता फरमाई है, कितना बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बना दिया कि ऐसे सेक्युलरली क्वालिफाइड लोग और बहुत ज्यादा अच्छी जो है वो जॉब्स करने वाले लोग, जिनके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है अपनी औलादों के लिए, इतना तनख्वाह इतनी अच्छी है, इतनी सैलरी है, इतना अच्छा बिजनेस है कि आराम से जो है वो ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकन स्कूल के अंदर और कैनेडियन स्कूल के अंदर अपने बच्चों को भेज सकते हैं और कोई मसला नहीं है उसके अंदर। अल्लाह की तौफीक है ना, हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं है कि किसी ने अमेरिकन स्कूल से निकाल करके बच्चे को जो है वो हिल्स में डाला, किसी ने किसी और स्कूल से बहुत ही इस किस्म के हाई फाई किस्म के वहां से निकाल कर अपने बच्चों को इसमें डाला। तो इसके ऊपर हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र भी अदा करने की जरूरत है और इस नेमत की कदरदानी करने की भी जरूरत है। इन दोनों को हम अलग अलग ना करेंगे, यहां भी शुक्र कर दिया हो गया काम, नहीं, कदरदानी भी करनी पड़ेगी और उसके लिए निजाम को मजबूत बनाना। ये एक ऐसा निजाम है, मिसाल तो उसकी कश्ती से दी जाती है ना, जैसे कश्ती है नूह की भी बात हुई थी कि जो कश्ती में आ गया गोया के निजाम के अंदर आ गया, अब वो तूफान नूह से महफूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल कश्ती की बात करें तो दिल में आता है कि अच्छा ज्यादा लोग आ गए तो कश्ती डूब जाएगी, ये कश्ती नहीं डूबती, ये कश्ती अल्लाह की बनाई हुई कश्ती होती है, ये कोई फिजिकल कश्ती नहीं होती। बल्कि इसका निजाम ये होता है कि जब इसके अंदर ज्यादा लोग आते हैं ना, तो या तो कश्ती एक्सपैंड हो जाती है या उस कश्ती की फर्दर कश्तियां बना देते हैं अल्लाह ताला। ये कश्ती डूबती नहीं है, ये जो इसमें सवार होता है ना वो हर एक के लिए काफी होती है। ये तो हमारी सआदत है, हमारा इसके अंदर एजाज है कि हम किसी के कश्ती में आने का सबब बन जाएं। और अगर हमने फिक्र ना करी, चंद लोग कश्ती में खुश, माशाल्लाह इस तरह पार्टियां हो रही हैं, इस तरह प्रोग्राम हो रहे हैं, स्विमिंग पूल इस तरह हो रहे हैं और कराटे के प्रोग्राम हो रहे हैं, हाँ भाई बहुत हो गया, बस अच्छा हो गया सब कुछ, अब हम कराटे करेंगे, अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर क्या होगा कि फिर जो कश्ती के बाहर है ना वो फिर इस कश्ती को खींचेंगे और फिर जो है ना वो कश्ती उल्टेगी और जो कश्ती के अंदर सवार थोड़े से लोग हैं ना वो भी साथ ही डूबेंगे, वो भी डूबेंगे। इसको बाकायदा हदीस मुबारका के अंदर इससे मिलती जुलती जो तस्वीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश करी वो क्या है कि गोया के एक जहाज है, मैं अपने अल्फाज में उस हदीस के मानी को बयान कर रहा हूं कि गोया के एक जहाज है, इस जहाज का जो अपर डेक है उसके अंदर लोग मौजूद हैं और इसके अंदर जो लोअर डेक है जहाज का जो बिल्कुल बॉटम होता है ना उसके अंदर भी लोग मौजूद हैं। अब जो पानी है, जरूरत के लिए इंसान को पानी चाहिए होता है, जो अपर डेक में जो लोग हैं ना उनके उन तक तो पानी अवेलेबल है, तो वो तो पानी जो है वो आराम से हासिल करके उससे जो है वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जो लोअर डेक वाले लोग हैं ना उनके पास पानी अवेलेबल नहीं है। तो नबी अलैहि सलाम फरमाया कि उन लोगों ने सोचा कि पानी तो बाहर बहुत है तो चलो हम कश्ती में सुराख कर लेते हैं, पानी आ जाएगा। अब यकीन करें हदीस है ये कि हम कश्ती में सुराख कर लेते हैं, पानी मिल जाएगा। तो नबी अलैहि सलाम फरमाया कि अगर ऊपर वाले लोगों ने इन लोगों को नहीं रोका तो ये खुद भी डूबेंगे और पूरी कश्ती को लेकर डूबेंगे, पूरी कश्ती को लेकर के डूबेंगे। तो ये कश्ती जो है ना जब तक हम दीन का काम ना करें, मेहनत ना करें, जिसमें सबसे पहले अपने ऊपर मेहनत होगी फिर दूसरों के ऊपर मेहनत करेंगे, तो ये कश्ती जो है जिसपे हम मजे उड़ा रहे हैं ये डूबेगी और सबको लेकर के डूबेगी। तो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, कुरान हिफ्ज कर लिया, अपने बच्चों को और अपने आप को खूब लगाएं कुरान की अब हिफाजत करने के लिए, अल्फाज की नहीं अहकामात की, कुरान के पैगाम की हिफाजत करने के लिए, कुरान को समझने के लिए, दरस कुरान से फायदा उठाने के लिए और उस फायदे को फैलाने के लिए। ये विंडो शॉपिंग नहीं चलेगी, दाखिल होना पड़ेगा, इसके लिए वक्त देना पड़ेगा, इसके लिए अपनी सलाहियतें और अपनी फिक्रें देनी पड़ेंगी। तब इस नेमत का सही मानों में शुक्र अदा करने वाले और कदरदानी करने वालों में हमारा शुमार होगा। अल्लाह ताला की रहमत से पूरी उम्मीद है कि वो उसके बाद हमें महरूम नहीं करेगा। जब हम उसकी कदरदानी करेंगे, उसके कलाम की कदरदानी करेंगे, तो उसकी रेसिप्रोकेशन से ज़्यादा अच्छी रेसिप्रोकेशन कोई भी नहीं कर सकता, और वो डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करता है, बल्कि आगे बढ़ करके कि जब हम चल के जाते हैं लेकिन रहमत दौड़ करके आती है, बढ़ करके रेसिप्रोकेट करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक मौके के ऊपर हमारे से इकट्ठे होने को, खुसूसन अल्लाह की के कलाम की नस्बत से इकट्ठे होने को हमारी निजात का भी सबब बना दे और हमारी कबूलियत का भी सबब बना दे, कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारी औलादों को, हमारी बीवियों, बहनों, बेटियों को और हमारे आने वाली नस्लों को जो है वो अपनी बंदगी के लिए कबूल फरमा लें, अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लें। अल्लाह ताला अपनी रजा, अपनी मोहब्बत के लिए कबूल फरमा लें। दुआ करिए सुभान रब्बिल आला वहाब। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। शायद इसको अभी याद आया तो इस वजह से दुआ शुरू करने से पहले तौबा कलमात पढ़ा देते हैं, जो कि हमारे हजरत की भी सुन्नत थी और हमारे मशाइख की है, तो उसके बाद फिर हम दुआ इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। दिल के अंदर सारी गलतियाँ, कोताहियाँ जो अब तक हो चुकी हैं, गुनाह हो चुके, उनसे सच्ची पक्की तौबा की नियत करके इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दर खैरिही والشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان والتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। इंशाल्लाह इन कलमात को पढ़ने से हम तौबा तायब हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाए, इसके ऊपर इस्तेकामत के साथ डटे रहना हमारे लिए मुमकिन बनाए। इसके लिए हम दुआ भी कर लेते हैं। सुभान रब्बिल आला वहाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك। اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, اے اللہ ہمارے سینوں میں اپنی محبت کے خزینے پیدا فرما, اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کے لیے قبول فرما, ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو جاری فرما, اے اللہ غفلت کی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما, اے اللہ غفلت کی زندگی میں مبتلا ہیں تو اے اللہ ہمیں ان سے چھٹکارا عطا فرما, اے اللہ ہمیں تذکر والی زندگی عطا فرما, اے اللہ ہمیں اپنے ذکر والی زندگی عطا فرما, اپنے دھیان والی زندگی عطا فرما, اے اللہ ہم بہت کمزور ترین بندے ہیں, اے اللہ انتہائی کمزور ترین حالات میں زندہ ہیں, اے اللہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ پڑ چکا ہے, اے اللہ باقی جتنی نعمتیں تھیں وہ تو ایک ایک کر کے چھین ہی چکی ہیں, اے اللہ جو ایک میکرو نظام کا اے اللہ انتظام آپ نے فرمایا تھا, اے اللہ وہ نظام تو کئی سو سال ہو گئے ختم ہو گیا، اے اللہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک پیچھے سے نظام چلا آ رہا تھا فیملی سسٹم کا، اے اللہ وہ فیملی سسٹم والا نظام بھی اے اللہ درہم برہم ہوا چلا جا رہا ہے، اے اللہ ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، اے اللہ طلاق کی شرحیں جو ہیں وہ آسمان کو بات سے باتیں کر رہی ہیں، اے اللہ لوگ ایسے ہیں، کل ہی ایک دوست نے بتایا کہ ان کا رشتہ طے ہو گیا، لیکن پھر اس عورت کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ مجھے بچے نہیں چاہیے شادی کے اندر، اے اللہ ایسے 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 لوگوں کے ذہن میں باتیں چل رہی ہیں کہ یا تو شادی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شادی نے ہونا ہے تو پھر اس کے بعد ٹوٹ ہی جانا ہے، طلاق تو ہو ہی جانی ہے، اور شادی سے پہلے بھی تو میں نے ہی کمانا تھا اور شادی کے بعد بھی میں نے ہی کمانا ہے، تو پھر مجھے شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے، اے اللہ یہ سوچیں عام ہو گئی ہیں، اور اے اللہ یہ سوچے بھی کہ شادی اگر کر بھی لیتے ہیں تو بچے ہمیں نہیں چاہیے، ہماری جو خواہشات ہیں ان کے اندر خلل آئے گا، اور ان کا انتظام کون کرے گا، ان کے اوپر خرچہ کون کرے گا، اے اللہ یہ ساری کی ساری تو وہی سوچے ہیں اے اللہ جو کہ ہمیں مغرب کے معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں، اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں جڑ پکڑ رہی ہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پہ تو جڑ پکڑ چکی ہیں، اے اللہ یہ یقین ہے اس نظام کی ناقدری کا نتیجہ ہے، اے اللہ یہ اللہ آپ کا عذاب ہے کہ ہم نے آپ کی نعمتوں کی قدر دانی نہیں کری، آپ کے دین کی قدر دانی نہیں کری، اے اللہ آپ نے ہمارے ساتھ اسی دنیا کے اندر وہ معاملہ کر دیا جو کہ آپ کے رسول کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا، اے اللہ یقیناً ہم نے زبان سے اگر انکار نہ بھی کیا لیکن عملی طور پر تو ہم نے بھی آپ کے رسول کا انکار کر دیا ہے، اپنے عملوں سے تو ہم ہر طرح سے ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کے قرآن کو ہم دراصل آپ کا کلام نہیں مانتے ہیں، اور اس کلام کے اندر جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں ان کی ہم اپنے لیے کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم بھی تو انکاری ہی ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے جب جرم ایک جیسا ہو تو پھر سزا بھی تو ایک جیسی ہی ملتی ہے، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے گھر والے بھی اور ہماری آل و اولاد بھی ہماری آنے والی نسلیں بھی اس انجام کو پہنچ جائیں کہ اے اللہ وہ بھی بالکل کافروں کا معاملہ کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ ہم ارد گرد مسلمان معاشرے میں اور پاکستانی معاشرے کے اندر ایسے کتنے واقعات دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اس سے پہلے اے اللہ آپ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ناشکری کے عظیم ترین گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نعمتوں کی ناقدری کے عظیم گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اے اللہ ان نعمتوں کا شکر کر کے، اے اللہ پھر بعد میں تو آپ کا وعدہ سچا ہے ہی کہ آپ تو پھر شکر کے اوپر نعمت کو بڑھاتے ہی ہیں، اے اللہ دعا مانگنے کے وقت تو ہم توفیق ہی آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ نے چھوٹا موٹا سا ایک نظام آپ کی مدد سے اور اپنے مشائق کی دعاؤں اور توجہات کی وجہ سے بنانے کی توفیق دی ہے، اے اللہ ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی شرور سے اس کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ خود بھی اس کو سمجھنے، اس کی قدر کرنے اور اس کے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اس کے فائدے کو عام کرنے میں بھی اے اللہ ہمارا حصہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کافروں کے بنائے ہوئے طریقے کو جو کہ دین اسلام میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، ہم اس طریقے سے کسی بات کی اشاعت کریں جو سنت طریقہ ہے، اے اللہ اسی میں تو خیر ہے، اے اللہ اسی کے اندر تو آپ کی جو ہے وہ مدد بھی شامل ہوتی ہے، اے اللہ اسی کے ساتھ تو آپ نے اپنی محبت بھی مشروط کر دی ہے، اے اللہ سنت طریقے سے یعنی خود نظام کا حصہ بن کے اس کو سیکھ کر کے سمجھ کر کے اور اس کو جو ہے وہ انڈیویجول لیول کی اوپر آگے بڑھا کر کے اے اللہ اس نظام کی مدد کرنا یہی سنت سے ثابت ہے، اے اللہ اس کے مطابق ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس طرح یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر ساتھی ظاہری سنتوں سے ماشاء اللہ بہت محبت کرتے ہیں، اے اللہ چہرے کی سنت ہو یا کچھ اعمال کی سنت ہو، اے اللہ جس طرح سے بہت ساری سنتوں سے آپ نے ہمیں محبت عطا فرما دی ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان احسان ہے ہمارے اوپر، اسی طریقے سے اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات والی سنت سے بھی ہمیں محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کیفیات کو خیر خواہی کی کیفیات، اے اللہ خشیت کی کیفیات، محبت الہی کی کیفیات، اے اللہ جنت کی چاہت کی کیفیت، اے اللہ جہنم کے خوف کی کیفیت، اے اللہ ہر ایک کی فکر کی کیفیت، اے اللہ قریبی لوگوں کی خیر خواہی، اے اللہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری، اے اللہ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری سنتیں اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں انہیں بھی اپنی سنتوں میں شامل، ان سنتوں پہ جن پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن بچوں نے قرآن مجید سنایا ہے، بڑوں نے قرآن مجید سنایا ہے، اے اللہ ان سے ان کو بہترین اجر اور جزا کے بدلے میں قبول فرما دیجئے. اے اللہ جنہوں نے اس قرآن کے سنانے کے لیے اپنے گھروں کو پیش کیا، اے اللہ اپنے وقت کو پیش کیا، اے اللہ گھر والوں نے بہت سارے اور انتظامات کیے اس قرآن کے تراویح میں سنانے کے لیے، اے اللہ پھر اس کے بعد ختم تراویح کے لیے جو اکٹھے ہوئے اور آج جو ہم اکٹھے ہیں اس کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی بہترین اے اللہ جزا کے بدلے قبول فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اے اللہ اس کو بلندیوں کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی آفات اور بلاؤں اور پریشانیوں سے اے اللہ حفاظت کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ جو لقمہ دینے والے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اے اللہ بڑے لوگ بھی تھے ان میں شامل، اے اللہ ان سے بھی اس محنت کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ان سب کو بھی کامل حافظ قرآن بنا دیجئے. اے اللہ ان کو بھی قرآن کی خدمت کے لیے، اے اللہ قرآن کے حفاظت کے لیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن کی محبت کے لیے، اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ سب کے حافظے میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ سب کی اے اللہ چاہتوں میں برکت عطا فرما دیئے، نیک چاہتوں میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا محافظ بنا دیجئے. اے اللہ بچیوں میں بھی ماشاء اللہ بہت سی بچیاں ہیں جنہوں نے حفظ کیا، جو حفظ کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں، اے اللہ ان سب کی محنتوں کو بھی قبول فرما دیجئے. اے اللہ ان کی ماؤں کی قربانیوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو اساتذہ کرام ہیں، اے اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مشائخ عظام ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں اے اللہ ہمیں حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ جو اچھی اچھی دعائیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرکز سے صاحبزادہ صاحب مانگ رہے ہیں یا دوسرے مشائخ مانگ رہے ہیں، اے اللہ جن کے اوپر آمین کہنے کی بھی آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی یا جن کو ہم کسی وجہ سے نہیں سن پا رہے ہیں، اے اللہ ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر ہمیں بھی اے اللہ خوب خوب حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے خیریں مانگی، اے اللہ ان خیروں کا ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ جن شرور سے اور فتن سے پناہ مانگی، اے اللہ ان شرور اور فتن سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائی تو وہ بھی تو آپ ہی نے عطا فرمائی. اے اللہ ہم اپنی چاہت سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اے اللہ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی، اے اللہ آگے کی بھی مہربانی آپ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے مزید بہتر سے بہتر بنا دیجئے. اے اللہ باقی ماندہ زندگی کو، گزری ہوئی زندگی میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، اے اللہ ان کے کفارے کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عبادت کا شوق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ذکر اذکار کا ذوق عطا فرما دیجئے. اے اللہ سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے. رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی شدید محبت کرنے والے ایمان والوں میں اے اللہ ہمیں بھی اور ہمارے تمام اہل و عیال اور اولادوں کو شامل فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کا عاشق بنا دیجئے. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں کا، ظاہری اور باطنی اور اخلاقی اور کیفیاتی، اے اللہ ان سب کا ہمیں حاصل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ظاہری فتنے ہوں یا باطنی فتنے ہوں، ایمان کے فتنے ہوں یا مال کے فتنے ہوں. اے اللہ خصوصاً فتنہ دجال سے سے جس کا زمانہ یقیناً ہمارے سر پہ آ کھڑا ہے، اور اس کے ظہور کے جو علامات ہیں وہ تیزی کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اے اللہ، اس فتنے سے بچنے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی، اے اللہ صحابہ کرام نے آنسو بہائے، اے اللہ روئے گڑ گڑائے، اے اللہ اس فتنے سے بچنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے لیے جو بچنے کے ذرائع آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے اور جن کو ہمارے مشائخ ہمارے دور کے ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اسباب کو اختیار کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری طرف سے جو بھی ہمارے مرحومین ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے والدین ہوں یا ہمارے دوسرے اعزاء و اقارب ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، خصوصاً ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار رحمت اللہ علیہ، اے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، جن کی مغفرت نہیں ہوئی ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آج رمضان المبارک کی بابرکت رات ہے، ہمارے یہاں طاق رات بھی ہے، 29ویں شب ہے، اے اللہ اس بابرکت موقع کے اوپر اپنے قرآن کی نسبت سے، اے اللہ آپ کے قرآن کی نسبت سے، آپ کی توفیق سے ہم یہاں پر اکٹھا ہیں، اے اللہ ہمارے سے اکٹھے ہونے دن، اے اللہ قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے کے تحت اکٹھا ہونے کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پہ اکٹھا ہونے کی، اے اللہ کوئی دفتری مقاصد نہیں ہیں، اے اللہ کوئی اور دوستیاں یاریاں نہیں ہیں، اے اللہ حتیٰ کہ کوئی رشتہ داریاں بھی نہیں ہیں، اے اللہ صرف آپ کی دین کی نسبت سے اکٹھے ہوئے، اے اللہ آپ نے سارے اسباب تو بنا دیے ہیں، اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، اے اللہ ان اسباب کے اندر ہمارے لیے رحمت کے فیصلے بھی شامل فرما دیجئے، اے اللہ مرتے دم تک ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدم فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کے اوپر اپنی رضا کے ساتھ اے اللہ موت کا ہمارے لیے فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ پہلے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ پھر اپنی رضا والی موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی اے اللہ شہادت والی موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب کے شہر کی مٹی عطا فرما دیجئے، اے اللہ کعبۃ اللہ کا ساتھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے پڑوسیوں میں بھی ہمیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی جس وجہ سے بھی پریشان ہے، اے اللہ گھریلو کسی وجہ سے پریشان ہو یا اے اللہ اپنی معاش کی وجہ سے پریشان ہو، نوکری کی وجہ سے پریشان ہو یا اولاد کی وجہ سے یا کسی رشتہ دار کی وجہ سے یا صحت کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ہماری ممانی صحت کی بہت اے اللہ ان کی خراب چل رہی ہے، اے اللہ ایسے تمام حضرات اور خواتین کی پریشانیوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی ان پریشانیوں سے آزاد کر کے اے اللہ ہمیں آخرت اور دین کی فکر کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس کے لیے فارغ فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی ضروریات پوری کرنے کا تو آپ نے ویسے ہی ذمہ لیا ہوا ہے، اے اللہ دنیا کی ضروریات کو بھی عافیت کے ساتھ پورا فرماتے رہیے، اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی بھی عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ نجات کے فیصلے فرما دیجئے، عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی ہے آپ ہی کی وجہ سے ہے، جو بھی تھا آپ ہی کی وجہ سے تھا اور جو بھی ہوگا آپ ہی کی وجہ سے ہوگا، اے اللہ جو اس کے اندر شر ہے اے اللہ وہ یقیناً ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ عفو درگزر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کی ضروریات کو آپ ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں، اے اللہ ہم سب کی کیفیات سے آپ ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو اور جو تمنائیں اے اللہ ہمارے حق میں بہتر ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ بار بار اپنے دین کی نسبت سے اکٹھے ہونے کے لیے اے اللہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.